ओम शांति, वंदे मातरम। क्यों वंदे मातरम कहा? क्योंकि बनारसी भाई और प्रेम भाई ने यह ट्रेनिंग सिर्फ टीचर्स बहनों के लिए ही रखी थी। मेडिकल विंग के मेंबर्स को तो बोनस में चांस मिल गया, क्योंकि आप मेडिकल विंग के मेंबर्स हैं। जब जवाहरलाल नेहरू लंदन में पढ़ते थे, तब उस कॉलेज का एक नियम होता था कि एक मास में हर विद्यार्थी को एक स्पीच देनी है, और जो स्पीच नहीं देगा उसको फाइन देनी पड़ेगी। तो जवाहरलाल नेहरू जब स्टूडेंट थे तब वो फाइन दे देते थे, परंतु स्पीच देने से उन्हें बहुत डर लगता था। और यह कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही व्यक्ति यंग जवाहरलाल कि जब बड़े हुए तब हमारे देश के सबसे अच्छे वक्ता बने। तो ऐसे आप में से भी कई होंगे कि जिन्हें डर लगता होगा कि हम कैसे अवधेश भाई बोलते, ऐसा नहीं बोल सकते। परंतु अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी जवाहरलाल नेहरू की तरह एक अच्छे से अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि 5 पार्टिसिपेंट स्टेज पर आ जाए। डरो नहीं, कुछ नहीं करना है, 5 लोग आ जाओ जल्दी। हाँ आइए आइए, 5 लोगों को, जो फर्स्ट आएगा उसको चांस मिलेगा। यस यस, कम कम क्विकली। हाँ बहनों में से भी कोई आ जाए। यस, देखो 5 लोग। हाँ अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह आप बैठिए, आप लास्ट में खड़े हुए। हाँ जी, प्लीज कम। नहीं खड़े हो जाइए, स्टेज पे खड़े हो जाइए। हाँ जी हाँ, अभी मैं आप लोगों को 5 प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? और आपको क्या करना है, गलत उत्तर देने, ठीक है? हाँ, सही उत्तर नहीं देने, गलत उत्तर देने, ठीक है? पैरों में कितनी उंगलियां होती है?
8।
अच्छा, सर में कितने बाल होते हैं?
9।
अच्छा, ये ट्रेनिंग कहां पर हो रही है?
हमारे घर में।
अच्छा, कितना प्रश्न हुआ?
1।
अच्छा, थैंक यू। देखो अच्छा, पास हो गए। नहीं तो आमतौर पर बोल देते हैं 4th प्रश्न। सही बोल देते, गलत उत्तर दिया। अच्छा, ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जा रही है?
ब्राह्मण।
अच्छा, तो गलत हो गया, ब्राह्मण ही तो दे रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। तो यह था जो अवधेश भाई ने आपको कहा, आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग अर्थात कि जब हम नए वक्ता को मिलते हैं तो मन में थोड़ा डर होता है, हम खुलते नहीं हैं, जैसे आइस की तरह साइकोलॉजिकली हो जाते हैं। परंतु आइस ब्रेकिंग का अर्थ है कि उसको ब्रेक करना और हम ऑडियंस के साथ ओपन हो जाए। अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कैसे आइस ब्रेकिंग करना होता है। तो अगर लंबे लेक्चर्स है, करीब 1 घंटा या उससे अधिक समय के, तो आइस ब्रेकिंग जरूर करना चाहिए। अगर बहुत शॉर्ट है, 10 मिनट का ही लेक्चर है, तो हम आइस ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा रिपीटेशन होगा। मैंने कोशिश ये की है कि जो बातें डॉक्टर शर्मा ने बताई है मैं रिपीट ना करूं। पब्लिक स्पीकिंग वह एक ऐसी कला है जो एटलीस्ट 50% जो हमारी सक्सेस है किसी भी फील्ड में, चाहे आपको अपनी सोसाइटी में ही मीटिंग में जाना है और वहां पर अपनी बात बतानी है, या तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, या एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, या जो हम सभी का लक्ष्य है कि हम ईश्वरीय सेवा करना चाहते हैं, इन सब में जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन की कला अच्छी तरह से सीख लेता है वह 50% सक्सेस उसकी हो गई। अब सिर्फ उसे 50% एफर्ट करनी है कि वह उस बेसिक फील्ड में वह सक्सेसफुल हो. पब्लिक स्पीकिंग इज अ डायनेमिक डेफिनेट एंड अ पावरफुल वे टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड सेल योर आइडियाज. तो पब्लिक स्पीकिंग का इतना महत्व है, वह एक सर्टन डेफिनेट वे है, वो एक पावरफुल मीन्स भी है. एक डायनेमिक तरीके से आप जीवन के किसी भी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए हमें पूरी कोशिश करके, मेहनत करके, इंटरेस्ट लेकर के इस कला को तो जरूर सीख लेना चाहिए. और क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा वक्ता नहीं होता है. बहुत सारे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के द्वारा ही हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं. गांधी जी ने भी जब पहली बार वह कोर्ट में खड़े हुए अपना केस लड़ने के लिए, तो बहुत सारा प्रिपरेशन करके गए थे, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स तैयार करके गए थे, परंतु जज के सामने खड़े हुए तो सारा भूल गए, कुछ भी बोल नहीं पाए. अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि कैसे वह नर्वस हो गए जब पहली बार स्पीच देने के लिए खड़े हुए. और एक फेमस वक्ता ने बताया है कि जब मैं पहली बार स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे इतना डर लग रहा था, और उस डर को रोकने के लिए मैंने अपनी मुट्ठियों को मैं जोर से दबा रहा था ताकि वह डर है वह खत्म हो जाए. और इतना जोरों से मैंने मुट्ठियों को दबाया था कि अंत में हाथ से खून आने लगा, और अंत में वो बहुत अच्छे वक्ता बने. अवधेश भाई ने कहा, ऐसे मुझे डर नहीं था पब्लिक स्पीच का. मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब से ही, क्योंकि ड्रामा में पार्ट लेता था, एक्टिंग करता था, और क्योंकि एक्टिंग करता था तो इसके कारण वो स्टेज फियर खत्म हो गया. परंतु फिर भी जब मैं SSC में था और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच देनी थी, इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बड़ी गैदरिंग थी और उन सब के सामने स्पीच देनी थी, मैंने खूब तैयारी की थी, कोई टीचर ने स्पीच लिख करके दी थी तो मैंने अच्छी तरह से रट ली थी, टीचर्स के सामने प्रैक्टिस भी खूब की थी, और वह स्पीच सचमुच अच्छी हुई. परंतु उसके बाद जो हमारे स्कूल के प्यून थे उसने मुझे बाजू में बुला के कहा, अरे गिरीश, मैं पीछे खड़ा था और देख रहा था कि तुम कांप रहे हो, तुम्हारे पैर कांप रहे, बोले जा रहे हो. तो प्रैक्टिस के बाद भी, कई वर्षों के बाद भी, ऐसे कोई अगर इंपॉर्टेंट ऑकेजन्स आपके सामने आएंगे तो ऑडियंस का डर लग सकता है, फिर भी प्रैक्टिस के द्वारा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं. यह जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है इज लाइक अ 5-स्टार होटल. 5-स्टार होटल में 5 स्टार्स होते हैं. शायद आप सभी चौंक गए होंगे कि इसमें तो 4 डिमेंशंस लिखे हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग की वही कला है कि डे बाय डे इंप्रूव करते जाना. आज सवेरे जब मैं यह प्रिपरेशन कर रहा था, पावर पॉइंट प्रोजेक्टर तो बन गया था ऑलरेडी, तो तब मुझे यह ख्याल आया कि ये 4 डिमेंशन नहीं है, 5 डिमेंशन होने चाहिए. तो जैसे जैसे हम इंप्रूव करते जाते हैं, प्रेजेंटेशन और भी अच्छा बन सकता है. सबसे पहला है टू ओवरकम द स्टेज फियर. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन. तो प्रिपेरेशन जितना अच्छा होगा आप अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे. थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज. फोर्थ यहां पर बताया है इन रीचिंग योर कॉन्शियसनेस, एक आंतरिक प्रिपरेशन करना. और पांचवी बात है कि कुछ जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसका भी ध्यान रखना. उदाहरण के रूप में आप बहुत समय से, जैसे मैं बैठा था उदेश भाई की स्पीच में और आपकी ब्लैडर फुल हो गई, आपको टॉयलेट जाने का ख्याल हुआ और आपने समझा लोगों के बीच में उठ नहीं सकते, लोग कैसा बुरा समझेंगे, और आप वहां कैसे भी करके बैठे रहे। पर फिर तुरंत आपको बुला लिया गया कि आपको एक घंटा स्पीच देनी है, तो क्या होगा? तो इसलिए ऐसे कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स भी है। प्यास की बात बहुत अच्छी तरह से हमें बताई गई, अगर हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी में कहां गए और बहुत भूख लगी और आपको स्पीच देनी है, तो भी वो इफेक्टिव नहीं हो सकती, कितना अच्छा प्रिपरेशन किया हो। तो इस प्रकार से ये इन ऑल इट्स समथिंग लाइक अ फाइव स्टार होटल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी बात का डर, न केवल स्टेज फियर परंतु और भी जो हमारे जीवन में भय है, उससे मुक्ति पानी हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कारण को जान ले। अगर हम कारण को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो सहज उससे मुक्ति प्राप्त होगी। आज हम भल इन कारणों के विषय में भी चर्चा करेंगे, आप भल लिखे नहीं, ये जो पॉइंट है, क्योंकि मैन्युअल में ट्रांसपेरेंसी जैसी है वैसी ही आपको मिल जाएगी, आप उससे भी ओवरहेड जो ट्रांसपेरेंसीज है वो बना सकते हैं, परंतु आप एग्जाम्पल्स भल लिखिए जो डिफरेंट और क्लेरिफिकेशन एग्जाम्पल्स, क्योंकि वह इसके विषय में डिटेल में आपको मैन्युअल में नहीं मिलेगा। डर का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कारण है वह है कि एक बार जब हमें कोई बुरा अनुभव होता है, उदाहरण के रूप में एक बार व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जा रहा था और लिफ्ट बीच में अटक गई, बहुत तकलीफ के बाद कई घंटों के बाद उसको बाहर निकाला गया, और फिर आमतौर पर डर की वजह से हम 2 महीना 3 महीना लिफ्ट को अवॉइड करते हैं, और उसके बाद कभी भी मौका मिले लिफ्ट में जाने का तो आप कांपने लगते, पसीना हो जाता है, पल्पिटेशन होने लगता है, और यह बात इम्पॉसिबल बनती है। आज कई लोग हैं कि उनको बंबई में अगर 25वीं मंजिल पर जाना है तो वह पैदल जाएंगे, वो लिफ्ट से नहीं जाते, क्योंकि एक बार उन्हें बुरा अनुभव हो गया तो बार बार डरते रहते हैं। ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग का भी हो सकता है कि पहली बार जब आप स्पीच देने गए और आपकी स्पीच अच्छी नहीं हुई, लोग हंसने लगे, और फिर हमने उसे अवॉइड किया, कई मास तक हम ऑडियंस को हम फेस ही नहीं करते हैं, तो उसके बाद बहुत ज्यादा डर लग सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि माता पिता की शिक्षा या तो टीचर्स की शिक्षाएं, माँ बाप अगर कहते हैं कि अरे तू कभी अच्छा बोल नहीं सकेगा, तू तो क्या 2 आदमी के सामने भी भाषण नहीं दे सकता है, और ऐसा अगर हमें कहा गया हो और हमने उस बात को स्वीकार भी कर ली तो हो सकता है कि कभी भी हम अच्छे वक्ता न बन सके। ऐसा ही कई बार टीचर्स भी जो रिमार्क देते हैं उसको अगर हमने स्वीकार कर लिया तो यह ग्रंथि अंदर में बैठ सकती है। और जो कुछ कारण है, हम सोचते हैं कि मैंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है, और क्योंकि तैयारी नहीं की है तो स्पीच अच्छी नहीं होगी, स्पीच अच्छी नहीं होगी तो मुझे डर लग रहा है। दूसरी बात है कि हम ये सोचते हैं कि पार्टिसिपेंट्स है वह मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम डरते। परंतु आमतौर पर अगर आपने तैयारी की है, भले आप छोटे भी है, तो पार्टिसिपेंट्स उसे जरूर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि इनकी एज बहुत कम है या तो इनका एजुकेशन कम है और हमारी एज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अपने स्तर पर भी अच्छी स्पीच देते हैं, आपने अच्छी तैयारी की है, तो अधिकतर ऑडियंस उसे जरूर एक्सेप्ट करता है। और एक तीसरा कारण यह भी होता है, हम यह सोचते हैं कि लोग मुझे हंसेंगे, और सचमुच भी मैं जानता हूं कि कुछ लोग हंसते हैं, परंतु वो मजाक करने वाले हंसने वाले लोग कौन से हैं? एक तो हो सकता है कि जो आपके लेवल के हैं, आपके ही दोस्त हैं कि जो आपकी मजाक करते हैं, और दूसरा वह ऐसे लोग हैं कि जो इमैच्योर है। आप जानते हैं कि एक पागल व्यक्ति आपको गाली दे तो बुरा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि हम समझते हैं तो पागल है। तो ऐसे ही अगर कोई फालतू हंस रहा है तो सोचो कि ये इमैच्योर है, तो उससे हम उस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और आपके फ्रेंड्स जो आपकी मजाक करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो इस बात को चैलेंज के रूप में लो कि मैं करके दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा वक्ता बन के दिखाऊंगा। और इस रूप में आप चैलेंज के रूप में इस बात को लेंगे तो भी हिम्मत बढ़ेगी। चौथी जो बात है, हमें यह लगता है कि ऑडियंस विल गिव नेगेटिव कॉमेंट्स, कोई क्रिटिसाइज कर देगा। यहां भी अच्छे लोग क्रिटिसाइज नहीं करते। एक अनुभव है कि एक यंग डॉक्टर ने ही काफी अच्छी तैयारी की, वो और वह स्पीच मेडिटेशन पर स्पीच देने लगे। एक बात आपको सचिन भाई बताएंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन में, कि इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं मेडिटेशन से। तो उन्होंने कहा कि यह जो इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम है उसमें अल्फा वेव्स जो है दे आर 18 टू 13 पर मिनट, परंतु यह बहुत बड़ी गलती थी। जो ईजी रिकॉर्ड होता है वो पर सेकंड रिकॉर्ड होता है, कि एक सेकंड में कितने वेव्स हुए, एक मिनट में नहीं। और बड़े अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट सामने बैठे थे, परंतु किसी ने भी तभी क्रिटिसाइज नहीं किया। वो लेक्चर पूरा होने के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें बुला करके कहा कि माय यंग फ्रेंड, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ईजी इट इज रिकॉर्डेड पर सेकेंड। तो उसने अपने आप को चेंज कर दिया। इस प्रकार से अधिकतर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देता है, और जो देता है तो फिर से यहीं भी यही बात है कि वह व्यक्ति इमैच्योर है, तो इसके कारण उसकी बात को हमें सीरियसली नहीं लेना है। पांचवा पॉइंट यह होता है, हमें अधिकतर यह डर लगता है सभी को कि भाषण देते देते बीच में मैं भूल गया तो, कि भाई पांच पॉइंट हुए, छठी याद ही नहीं आई तो क्या होगा। तो एक तो आपके पास ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी या कोई ना कोई चीज हो कि जिसको आप देख सकते हैं, और दूसरा जो अभी बहुत अच्छा तरीका देखा है कि कई बार आपको गांव में और बहुत सारे स्थानों पर ओएचपी भी नहीं मिलेगा, या तो खिड़कियां इतनी अधिक होगी कि डार्क नहीं होगा वो हॉल, और उसके कारण आप ओवरहेड प्रोजेक्टर भी नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस प्रकार के नोट्स लिख लें, कि छोटे से पेपर्स में आप एक अपनी स्टैंडर्ड साइज बना लो कि भी मेरे हाथों की यह स्टैंडर्ड साइज है, तो कईयों को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। आप उसको छुपके से हाथ में रखिए और एक एक को चेंज करते जाइए, और देखने का कोई, जैसे अभी तो फोकस नहीं मिल रहा है यहां पर, लेकिन अगर फोकस मिले तो उनको बता दो कि आप एक जगह पर फोकस देना, तो जब भी आपको देखना है तो आप वहां आ जाइए, तो उस पॉइंट को आप आराम से देख सकते हैं, फिर से घूमते रहिए। तो नोट्स आपके पास होगी तो भूलने की कोई बात ही नहीं है, और फिर भी उदाहरण के रूप में आपको ठीक से नहीं दिखाई दिया, भूल गए तो भी डरो नहीं, क्योंकि ऑडियंस को तो पता नहीं आपने क्या तैयारी की है कि आप कोई पॉइंट भूल गए। बोल उसको सिंपल वे में बता दो, उस बात को थोड़ी सी और चेंज करके बता दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो यह कोई पावरफुल कारण नहीं है कि हमें डर लगे। छठी बात यह होती है कि हम यह सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, मैं तो डॉक्टर प्रेम जैसा स्पीकर नहीं हूं, तो मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूं, तो मुझे डर लगता है। परंतु यह आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की कॉपी भी नहीं करनी है। अगर मैं जूनियर हूं तो कोई बात नहीं, मेरे में कुछ कमियां होंगी, धीरे धीरे वह कमियां इंप्रूव होती जाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा भी कि नोबडी इज बॉर्न एज अ गुड स्पीकर, विथ प्रैक्टिस ओनली वी कैन डेवलप इट। सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं परफेक्ट स्पीच डिलीवर नहीं करूंगा तो मेरी मां उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। या तो हमारे में मां नहीं होगी, हमारे में दीदी हो सकती है कि मेरी बहुत अच्छी स्पीच नहीं होगी तो बड़ी दीदी मुझे डांट देगी, तो इसके कारण भी हम पहले ही घबराते हैं, और जो प्रिपरेशन किया है वह भी भूल जाते हैं। तो कहा गया है कि परफेक्शन इज पैरालाइजिंग किसी भी बात में। 85% 90% भी हम कोई काम कर पाते तो अच्छा है, और धीरे धीरे वह परफेक्ट हो जाएगा। पिछली बार जब स्मार्ट की ट्रेनिंग हुई तब एक बहन इस ट्रेनिंग में थी कि उनको जब प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया तो वह सिर्फ एक मिनट ही बोल पाई और फिर भूल गई और बैठ गई। वास्तव में उसकी अदरवाइज पब्लिक स्पीच अच्छी है, परंतु क्यों यह डर लगा? क्योंकि उसने सोचा था कि मुझे परफेक्ट स्पीच देनी है, सबसे अच्छी देनी है, तो इसके कारण घबरा के बैठ गए। और अभी उसी उदाहरण में आगे उसने प्रैक्टिस की, उस बात को चैलेंज के रूप में ली कि अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी। वो प्रैक्टिस करती गई करती गई, और एक बार यहां पर ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम हुआ तब उनको चांस दिया गया। तो आपको शायद सुनकर के आश्चर्य होगा कि अंत में उसमें उषाबेन ने भी लेक्चर दिया था, मैंने दिया था, अच्छे अच्छे लोगों ने लेक्चर्स दिए थे, परंतु जब इवैल्यूएशन हुआ तो उनको सबसे अच्छे मार्क मिले, सबसे ज्यादा लोगों ने उस लेक्चर को पसंद किया। तो इस प्रकार से आज हमें कितना ना डर लगता हो, अगर एफर्ट करते जाए तो हम एक बेस्ट वक्ता बन सकते हैं। अगर फियर्स को हमें ओवरकम करना है पूरी तरह से तो क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स है इसके, कॉजेस के अलावा। एक बार कॉज पता चल गया फिर लॉजिकली समझाइए कि भी ये बात गलत है, इसके कारण मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार अपने आप से बातें करिए। इसके अलावा पहला स्टेप है कि अपने डर को जानिए कि मुझे क्यों डर लग रहा है, इसका कॉज क्या है। और जब हम डर को जान लेते हैं और साथ साथ जब हमें डर लगता है तब उसके साथ क्या फीलिंग्स आती है, किस प्रकार की भावनाएं पैदा होती है, मैं नर्वस हो जाता हूं, मुंह सूख जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कांपने लगता हूं, क्या होता है? अगर आपको ठीक से पता चलेगा कि भी डर में क्या हो रहा है तो वह सबसे पहला कदम है। एक तो आपने समझा और साथ साथ में उसके साथ जो फीलिंग्स है उसको भी अच्छी तरह से जान लिया तो आगे के कदम बहुत ही सहज होंगे। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार के डर का मूल कारण है कि हम बहुत प्रकार के अनुमान करने लगते हैं कि यह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लोग हंसने लगेंगे। जब हम अनुमान करने लगते हैं तब डर बढ़ता है, तो इसलिए अनुमान करना बंद कर दे, जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने अच्छी तरह से तैयारी की है, जितनी मैंने तैयारी की है उतना तो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा ही, लेट मी गो एंड प्रेजेंट माई सेल्फ। और नेगेटिव गेजिंग ना करें, उल्टा हम जो पॉजिटिव आउटकम है वो पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचे कि ऑडियंस को जरूर अच्छा लगेगा, कम से कम थोड़े लोग तो होंगे ही कि जो मेरी स्पीच को पसंद करेंगे। तो अगर 15% ने भी पसंद किया तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर पॉजिटिव आउटकम के बारे में हम सोचते जाते हैं तो भी डर कम होता है। साथ साथ वर्तमान में जियो, भविष्य के बारे में सोचो नहीं कि क्या होगा, या किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट दे दी उसके बारे में भी नहीं सोचना है। इस क्षण मैं बोल रहा हूं उसका मुझे आनंद लेने दो। और जितना जितना हम वर्तमान का आनंद लेते जाते हैं उतना भी नेगेटिव चीजें चली जाती, क्योंकि कहते हैं कि फ्यूचर इज लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, डेफिनेट नहीं है कि वो हमें मिलेंगे या नहीं। कहा गया है कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट मोमेंट इज अ गिफ्ट। मैं आपको छोटी सी भी गिफ्ट दूं तो आप क्या करेंगे? थैंक यू कहेंगे। तो ऐसे ही वर्तमान कितना ना छोटा हो, सिंपल सा भी हो, तो भी वर्तमान का हम पूरा पूरा आनंद ले, वर्तमान में जीने लगे तो उससे भी काफी डर कम हो जाएगा। आपने जो पास्ट में कुछ अच्छी बातें की है, कहीं अनजाने स्थान पर जाकर के भी आप काम करके आए हैं, बड़े व्यक्ति को आपने ज्ञान दिया है और उसको अच्छा लगा आपका ज्ञान, या तो कभी आपने छोटी सी स्पीच दी है जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब भी, इस प्रकार की बातों के बारे में सोचिए कि सचमुच मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। बल दूसरी कोई फील्ड हो, परंतु उस फील्ड में मैं सक्सेसफुल हुआ था तो आज भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस प्रकार से आप बार बार उन बातों के विषय में सोचेंगे, टेक स्टॉक ऑफ योर गुड एक्शंस, उससे भी डर कम हो जाएगा। कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसे विचार अपने आपको बार बार दीजिए कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए कि आई कैन डू इट, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव व्हाट आई बिलीव, जिसको मैं मानता हूं वही मेरे में है। अगर मैं मानता हूं कि मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, जरूर अच्छा प्रवचन दूंगा, तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। साथ साथ ये भी कहिए कि एक बार फेल हुए उसका अर्थ यह नहीं है कि सदा फेल होंगे। बल हम 5 बार फेल हुए हो, प्रॉपर एफर्ट करें, तो 6ठी बार हम जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो मुझे भूतकाल का अनुभव हुआ है वो उल्टा फ्यूचर को फेस करने में मुझे मदद करेगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि भी क्यों पास्ट में मेरा प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, या तो प्रिपरेशन ठीक नहीं था, मैं जल्दी जल्दी में वहां गया था, और कोई कारण था। वह अगर ठीक से समझ में आ जाए तो उल्टा मुझे सफलता मिलेगी। हमारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं, फीलिंग्स, इस इमोशंस को हम अच्छी तरह से मैनेज करना भी सीखे। एक तो भावनाओं में बह न जाए, हमको राइट ब्रेन को भी यूज करना है तो लेफ्ट ब्रेन को भी यूज करना है, दोनों का बैलेंस होगा तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और यह भावनाओं या तो इमोशंस हमें कहीं खींच के न ले जाए, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, कहते हैं कि ऑब्जर्व योर इमोशंस। ये जो डर की फीलिंग या तो और कोई भी फीलिंग आती है वह कैसी है, वो एक छोटे बच्चे जैसी है। एक बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, उधम मचा रहा है, उसको आप कहेंगे शट अप, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, तो क्या करेगा? हाँ स्नेहा बेन, क्या करेगा? हाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। हाँ और मस्ती करेगा। परंतु उसका अच्छा तरीका है कि उसको कुछ नहीं कहो, ध्यान से देखने लगो। आप एकदम शांति से उसको देखने लगेंगे, जैसे उसे पता चलेगा कोई बड़ा व्यक्ति मुझे देख रहा है, वो चुपचाप होकर शांति से बैठ जाएगा। ये हमारे इमोशंस का भी ऐसा ही है कि उससे लड़ेंगे तो वो इमोशंस बढ़ेंगे, परंतु उसे बस ऑब्जर्व करने लगो। जैसे और किसी को हम साक्षी भाव से देखते हैं, ऐसे ही अपने डर को भी साक्षी भाव से देखने लगो। जैसे ही आप उन विचारों को, उन फीलिंग्स को देखने लगेंगे, धीरे धीरे वह बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ले जाए। बल कितना ना डर लगता हो, यह तो हम सोच सकते हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरी स्पीच अच्छी होगी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऐसा बार बार सोचने से भी इमोशंस को हम ठीक से मैनेज कर सकते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि सफलता उसी को मिलती है कि जिसमें आत्मविश्वास है। अमेरिका की शोध किसने की थी? फर्स्ट कौन? हाँ कोलंबस, राइट। तो पहले जब कोलंबस गया, अपनी बहुत अच्छी बोट आदि बनाई और गया, तो लोगों ने उसे बहुत डराया था। पता है क्या कहा था? क्योंकि तब लोग ये मानते थे कि पृथ्वी वो गोल नहीं है, पृथ्वी तो सीधी है। तो लोगों ने कहा अरे बुद्धू है, तू जाएगा पृथ्वी के कोने पे तो मर जाएगा। परंतु उसे कॉन्फिडेंस था कि भी मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, तो इसके कारण आज कोलंबस का नाम अमर हो गया। तो इसी प्रकार हमें भी जितना विश्वास होगा तो सफलता जीवन में जरूर मिलेगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा है कि बेस्ट एंटीडोट ऑफ फियर इज टू फेस इट, कि सबसे अच्छी दवाई डर की है कि डर का सामना करो। इमर्सन ने भी ऐसी बात कही है कि इफ यू फेस योर फियर्स, फियर विल डिसअपीयर। तो इसके कारण किसी भी डर का हमें सामना करना है, परंतु सीधा आप सामना नहीं कर सकेंगे, नहीं इतने नर्वस हो जाएंगे कि होगा ही नहीं। पहले एक ट्रीटमेंट थी, उसमें क्या करते थे कि अगर किसी को चूहों का डर लगता है तो उसको एक रूम में बंद कर देते थे जिसमें बहुत सारे चूहे हो। तो पहले तो व्यक्ति इसको फ्लोडिंग कहते हैं, पहले तो व्यक्ति चिल्लाएगा, कूदेगा, बहुत चीखेगा, परंतु फिर उसको पता चलेगा कि अरे कोई डरने की बात नहीं है, और हो सकता है कि चूहा लेकर के वो बाहर निकले। परंतु इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हुए, ये ट्रीटमेंट अभी नहीं करते, बंद हो गई। क्यों हुआ कि भी जब ऐसा करते थे तो कईयों को हार्ट अटैक आ जाते थे और वहीं डेथ हो जाती थी। तो इसके कारण ये ट्रीटमेंट बंद कर दी गई। अभी दूसरी ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। और क्या करना है इसमें, हम मूल बात पर आते हैं कि आपको जो ऑडियंस का डर कम करना है तो अपने डर को 4 या 5 स्टेजेस में बांटिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें डर लगता है, कि सबसे ज्यादा डर हो सकता है कि बहुत बड़ी सभा है, सीनियर लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है कि इम्पॉसिबल, आप बोल ही नहीं सकते। फिर सेकेंड ग्रेड लीजिए कि भी मेरे लेवल के लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, पहचान वाले हैं, उनके सामने बोलना है तो भी बहुत डर लगता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। थर्ड ग्रेड को भी सोचिए कि अगर बच्चे बैठे हैं और बच्चों के सामने लेक्चर देना है तो बहुत कम डर लगता है। और भी एक सबसे कम वाली स्टेज भी सोचिए कि अगर मिरर में देख के बोलना है, मुझे अपना ही चेहरा देख करके लेक्चर देना है तो भी मैं थोड़ा नर्वस होता हूं, परंतु वह नर्वसनेस बहुत बहुत कम है। तो ऐसे अपने 4-5 ग्रेड में बांट दिया। उसके बाद सबसे जो कम से कम डरावनी परिस्थिति है उस परिस्थिति को लेना है। हम अच्छी तरह से योग करें, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, योग करना जानते हैं, तो जितना हो सके उतना गहरा योग 20 मिनट 25 मिनट तक करें। और फिर जब उस गहराई में योग की स्थिति में गए हो तब आप एक वीडियो फिल्म की तरह सोचिए कि सचमुच अभी वो जो सबसे कम डरावनी परिस्थिति है वह आपके सामने आ रही है, कि भी बच्चे बैठे हैं और उनके सामने आपको स्पीच देनी है, आपका नाम पुकारा जाता है, आप खड़े होते हैं, बोलना शुरू कर रहे हैं, भले थोड़ा डर लगेगा फिर भी वह हूबहू एक वीडियो फिल्म की तरह सारा पिक्चर निर्माण करिए कि यह घटना अभी अभी मेरे सामने हो रही है। और डर लगना चाहिए, अगर आपको उस परिस्थिति में डर नहीं लग रहा है तो कोई फायदा नहीं। अगर डर नहीं लगता है तो उससे ज्यादा डरावनी परिस्थिति लीजिए, उसमें भी नहीं लगता है उससे ज्यादा डरावनी लीजिए कि जिसमें आपको कुछ डर लगे। और दिन में कम से कम 3 बार रिपीट करिए ऐसा। अगर थोड़े दिन करते रहेंगे तो उस स्थिति का डर खत्म हो जाएगा। फिर और एक स्टेप आगे बढ़िए। ऐसे करते करते यह जो मेंटल प्रैक्टिस है उसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। और मेंटल प्रैक्टिस में अगर आपको बिल्कुल डर नहीं लगा तो ऑडियंस का डर भी बहुत कम लगेगा। शायद आप पूछेंगे कि भी कैसे, इसके पीछे तर्क क्या है। बहुत बड़ा तर्क है, कहते हैं कि हमारी मन बुद्धि वास्तविकता और कल्पना का भेद नहीं जानती। जब हम कल्पना करते हैं तब भी मन बुद्धि के लिए तो वह सत्य है। इसी के कारण शरीर में भी चेंजेस होते हैं। हम सुख की कल्पना करते हैं तो भी हमें शरीर में अच्छे परिवर्तन होते हैं। जब डर के बारे में सोचते हैं तो भले ऑडियंस सामने नहीं है फिर भी कांपने लगते हैं। तो अगर ऐसे आप कल्पना करते करते अगर चित्र निर्माण करने में नहीं डरेंगे तो ऑडियंस जब सामने आएगा तब भी डर बहुत कम लगेगा। और साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करिए, बहुत अच्छी है। और ये भी सोचिए कि दिस इज द ओनली वे, खड़े होकर लेक्चर देना उसके सिवाय दूसरा रास्ता है ही नहीं। शिवाजी जब लड़ाई करते थे तो तब पता है क्या टेक्निक अपनाते थे, हाँ किसको मालूम है, और हाँ और किसी को यहां पता है, अच्छा क्या करते थे बोलिए, यस यस, हाँ सिस्टर प्लीज गेट अप, क्या करते थे, हाँ हिंदी में क्या करते थे, अच्छा अच्छा हाँ और कोई अच्छा स्नेहाबेन को मालूम है स्नेहाबेन वहां बोलो क्या करते थे तो क्या हुआ पता चला ऐसे तो क्या वास्तव में उसकी स्टोरी ऐसी कि पहले जो रोप को कुत्ते के द्वारा ऊपर भेजा जाता था फिर एक के बाद एक सभी जो सोल्जर्स है वह चढ़ जाते थे अंत में कमांडर खुद चढ़ता था और जब वो पहुंचता था तो उसे काट देता था क्यों काट देता था क्योंकि जब दुश्मन सामने आएगा तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोचेंगे हम भाग जाए परंतु जब उन्हें पता चलता था कि ये तो कट गया है नीचे जंप करेंगे तो भी मरना है उससे तो अच्छा लड़के मरे तो पब्लिक स्पीकिंग में भी ये सोचिए कि खड़े होके लड़के मरना अच्छा है हालांकि ऐसे ही बैठे रहे डंडा दूसरी ये सही बात है देखिए रोम ने जब ब्रिटेन पर चढ़ाई की तब भी शिप्स में सारे गए और पता है क्या हुआ शिप्स में से सब उतर गए ब्रिटेन में आ गए उनकी लैंड पर फिर क्या किया पता है किसी को शिप्स को जला दिया क्यों जला दिया कि वापस भाग ही नहीं सकते अभी बस लड़ना ही है तो यह एक आप स्टेट ऑफ माइंड बनाइए और हर बार मौका मिले मौका लीजिए कितना ना वो डिजास्टर हो कितना ना फेल हो जाए और साथ साथ ये भी सोचिए कि कैसा भी विषय हो आपने उस विषय को तैयार किया है परंतु जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने तो तैयारी नहीं की है पांच सात किताबें नहीं पढ़ी है तो इसके कारण उनको आपसे कम इन्फॉर्मेशन है और उनको कम जानकारी है तो डरने की कोई बात नहीं है ये अलग अलग बातें हैं जो भी आपको अच्छी लगे वह आप सोचना ऐसा भी चिंतन कर सकते कि जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और यहां इसलिए सारे इकट्ठे हुए आज मुझे कहने के लिए कि भाई साहब सॉरी अभी हम आपके पैसे नहीं लौटा सकते हैं 10 दिन के बाद देंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसका डर लगेगा आपको ज्ञानी जैल सिंह जी एक काम करते थे उनको बड़ा डर लगता था पता है एशियन गेम्स में थोड़ा भी बोल नहीं पाए वो तो वो क्या सोचते थे पता है किसी को हाँ बोलो बोलो क्या बोलते थे हाँ बोलिए खड़े हो जाइए हाँ कि ये सब जो बैठे हैं मेरे सामने ऑडियंस आया है ये सब गोभी के फूल हैं तो इनसे क्या डरना है और ऐसी प्रैक्टिस करते करते उनका डर है वह कुछ कम हुआ और एक छोटी सी बात करनी चाहिए कि अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप स्पीच देने के लिए जाए उससे पूर्व और एवरीडे भी ये प्रैक्टिस करिए कि कुछ गहरे सांस लीजिए सही तरीके से गहरे सांस लीजिए हमारे में से मैंने देखा है कि करीब 30% लोग सांस ही गलत लेते हैं और सांस गलत लेंगे तो कैसे एनर्जी आएगी आपको चेक करना है ठीक सांस लेते हैं या नहीं करना है चेक हाँ तो 1 मिनट खड़े हो जाओ और इसमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है हमें अपनी चेकिंग करनी है इसलिए दूसरे को नहीं देखना सिर्फ ये पता करो कि आप अपना एक हाथ है राइट हैंड पेट पर रखिए और सांस लीजिए और सांस लेते समय ये पता करो कि जब आप सांस लेते हैं सब सांस जब अंदर जाता है तो पेट अंदर जाता है या बाहर आता है बोलना नहीं आप अपना चेक कर लो सिर्फ कि सांस लेते समय पेट अंदर जाता है या बाहर आता है चेक नहीं अभी नहीं बोलो नहीं मैंने कहा अच्छा कौन कौन कह रहे हैं कि पेट बाहर आता है हाथ उठाओ हाँ ठीक से सोचो गलत नहीं हाथ उठाना कौन कौन कहता है पेट बाहर आता है हाँ तो इतने ही लोग सही सांस ले रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया सभी गलत सांस ले रहे हैं देखो अभी तो बहुत मैं समझता हूं 60% ने हाथ नहीं उठाया शायद डर के बैठिए बोले हो सकता है कि आपने डर के मारे भी हाथ नहीं उठाया तो सचमुच टेस्ट आप देखना अब ये तो थोड़ी एक्सपेरिमेंट कि आप स्वयं देखना कि क्या हो और क्या मैं आपको रीजन बताता हूं कि चेस्ट और पेट के बीच में डॉक्टर्स तो जानते हैं बहुत बड़ा मसल है जिसको डायफ्राम कहते हैं अगर आपको गहरा सांस लेना है और डायफ्राम को आप नीचे दबाएंगे तो चेस्ट में अधिक जगह निर्माण होगी और चेस्ट में अधिक जगह निर्माण होगी तो आप ज्यादा सांस ले सकते हैं इसलिए सही तरीका यही है कि ब्रीथ करते समय पेट आगे आए, और अभी चेंज कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत हो गया तो क्या करें, उसकी भी एक सरल सी विधि है। आज समय कम है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता, परंतु बहुत सिंपल है। आप 8-10 दिन करेंगे आपकी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी। जो भी गलत ले रहे हैं वह पहले सांस को बाहर आने दे, जितना हो सके उतना बाहर आने दो, और जब आप अंत में होते हैं तब पेट को और थोड़ा अंदर खींचो, 1-2 सेकंड जितना आप रख सको रखो, और फिर सांस को लो तो ऑटोमेटिक पार्ट पेट है वो बाहर आएगा। कैसे करना मैं आपको बताता हूं, इससे नहीं इजी है, ये देखिए आप, फिर से करके बताऊं, सांस को बाहर ला, भले मुंह से भी लो, आपको लगता है नाक से सांस, क्योंकि कई बार हम ऑक्सीजन बहुत कम ले रहे हैं, वास्तव में हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ब्रेन का जो वजन है वो बॉडी की कंपैरिजन में सिर्फ 2% है, परंतु ब्रेन को पता है कितना ऑक्सीजन चाहिए, 20% ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए हम जितना ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे उतना अच्छा है। तो कैसे करना है, इस प्रकार से, और धीरे धीरे जितना डीप सांस ले, इसमें सारी प्रैक्टिस भी है कि कैसे आप 6 सेकंड तक सांस को ले, 3 सेकंड होल्ड करें, 6 सेकंड बाहर आए, फिर से 3 सेकंड होल्ड करें, परंतु कम से कम इतना तो करिए कि जितना डीप ले सको उतना डीप और करेक्ट ब्रीदिंग को लीजिए, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दो है, एक तो योर ओपनिंग रिमार्क, जब आप स्पीच की जो फर्स्ट आपकी रिमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और ऐसे स्पीच देनी चाहिए कि जब आप 5-7 स्टेटमेंट बोलो तब तक ऑडियंस को लगना चाहिए कि भाई यह जो भी कहेगा हम मान लेंगे। एक बहुत अच्छे राइटर ने कहा है कि एक छोटा सा बच्चा स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ, उसने 5-6 स्टेटमेंट बोले, वो राइटर कहते हैं मैं सोचने लगा कि ये बच्चा कोई भी चीज मुझे बेच सकता है, इतना अच्छा सेल्समैन है कि जो कहेगा मैं खरीद लूंगा। तो ऐसे लोगों पर इंप्रेशन होनी चाहिए कि दिस स्पीच इज गोइंग टू बी वेरी गुड। नाम मुझे याद नहीं आता है, करीब 20 साल पहले क्रिकेटर एक खेलने के लिए आए थे, थोड़ा ही समय खेले, बहुत ज्यादा खेले नहीं, क्या नाम था पता नहीं, किरीट पटेल या कुछ, पटेल तो जरूर था, फर्स्ट में क्या था पता नहीं, नहीं तो और कोई किरण पटेल या कुछ था, हाँ कौन, ब्रिजेश पटेल, राइट। तो क्या हुआ था कि भारत हार रहा था, वो 8वें 9वें शायद आए खेलने के लिए, और डेफिनेट था कि भारत हार जाएगा, लेकिन जैसे ही आए उसने सिक्सर लगाई, तो लोग इतने उसके ऊपर खुश हो गए, बल वो थोड़ा सा ही खेला, लेकिन जब भी वो खेलने के लिए आता था लोग उस पर फिदा हो जाते थे। तो ऐसे ही बिगिनिंग शुड बी द बेस्ट, जो प्रिपरेशन करना है फर्स्ट प्रिपरेशन इतना अच्छा करना चाहिए कि उसकी पावरफुल इम्पैक्ट। और क्यों जो हमारी क्लोजिंग रिमार्क है वो इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे करनी है। क्लोजिंग रिमार्क क्यों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उसी को याद रखेंगे, सारी स्पीच तो उनको याद नहीं रहेगी, क्लोजिंग रिमार्क्स उनको याद रह जाएगी, तो इसलिए। और क्लोजिंग रिमार्क का और भी एक इम्पॉर्टेंस है कि जब आप स्पीच पूरी करेंगे और ऑडियंस जो रिस्पांस देगा उसका आधार क्लोजिंग रिमार्क पर है। कई बार देखा है कि हमने बहुत अच्छी स्पीच दी, परंतु एंड में आप कुछ ऐसी बात कह के बैठ गए कि लॉकडाउन तालियां ही नहीं बजाई, या लोग हंसे नहीं, जो भी रिस्पांस होना चाहिए उनके इमोशंस अराउज होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग रिमार्क थी वो क्लोजिंग रिमार्क अच्छी नहीं थी। और अब ये अगर हमें करना है तो किस प्रकार से किया जाए, कि ओपनिंग रिमार्क, इस बात को नहीं देखना, ओपनिंग रिमार्क और क्लोजिंग रिमार्क में हमें क्या क्या करना है। तो ओपनिंग रिमार्क का एक सरल सा तरीका है कि कोई एक स्टोरी ढूंढ निकालिए जो उससे एप्रोप्रिएट हो, और उस स्टोरी को ऐसे कहिए कि जैसे आप सस्पेंस के रूप में कह रहे हैं। जो मैंने जवाहरलाल की स्टोरी की, ऐसे दूसरी एक स्टोरी मैं बताता हूं, उसको कई जगह पर आप फिट कर सकते हैं, कि जिसमें लोग तुरंत आपको देखने लगते कि क्या बोल रहे हैं। 1886 में मिस्टर निंजर जो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, पर पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं, परंतु ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ कि भी आपको ईयर भी याद है, अब ये जवाहरलाल का मुझे ईयर याद नहीं था, नहीं तो वो ईयर भी बताना चाहिए कि इस साल में वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब ऐसा ऐसा हुआ, तो एक तो आपकी इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगी और तुरंत अटेंशन होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बोले जा रहा है। तो इस प्रकार से छोटे से, वो लंबा उदाहरण भी नहीं होना चाहिए, छोटे से एग्जाम्पल से हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा बात, कुछ कोटेशन के द्वारा, कोई अच्छे व्यक्ति का आपके पास कोटेशन हो इस विषय का, उस कोटेशन से आप शुरू करिए, या तो कोई कविता की दो पंक्तियां आपको पावरफुल मिल जाए, वो सीधा आप बोलना पंक्तियों से ही शुरू करो, विषय बोलना नहीं और कुछ नहीं करना है, अपने वो पंक्तियां ही बोलना शुरू की तो लोगों का ध्यान आपकी ओर चला जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। और अलग अलग जो हम आपके टॉपिक्स लेने वाले हैं उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न रूप से बिगिनिंग है वह किया जा सकता है। और इसी प्रकार से क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वह क्लोजिंग रिमार्क्स के बारे में भी हम तैयारी कर सकते हैं। यही बातें जो मैंने आपको कही वह बातें हो सकती है, भले आप कंक्लूजन भी बता दें कि इन नटशेल और टू सम अप आई वॉन्टेड टू टेल यू सच एंड सच थिंग्स, और फिर एंड में यह कहो कि यह कविता की दो पंक्तियों के द्वारा मैं अंत करना चाहता हूं, या तो यह एक कोटेशन के द्वारा मैं अपने प्रवचन को कंक्लूड करना चाहता हूं, बस वह कह के यू सिट डाउन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बात है, कोई अच्छी बात है तो लोग आपको देखते रहेंगे और जो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए वह रिस्पॉन्स अच्छी तरह से देंगे। तो सारी स्पीच में भल आपकी कंटेंट की भी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग के चार स्टेटमेंट और लास्ट के चार स्टेटमेंट वो अच्छी तरह से तैयार कर लो, बीच में का भले आप लैंग्वेज को सिंपल बना करके भी बोल सकते हैं, उसे पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। और अब ये इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कि स्पीच भल 10 मिनट की हो या 6 घंटे आपको बोलना है, परंतु ये इंग्रेडिएंट हर स्पीच में इंक्लूड होने चाहिए। एक तो बात यह कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन को कैसे आगे ले जाना है, यह ना हो कि अंत की बात हमने शुरू में बता दी, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपके पास बड़ा क्लियर हो कि भाई इस प्रकार से मैं इसे डेवलप करने वाला हूं, और हो सके तो कुछ तरीके से आप पार्टिसिपेंट्स को बता भी दो कि हम ऐसे ऐसे इस स्पीच को डेवलप करने वाले हैं, कि उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है या तो 3 हिस्सों में बांटा है, या इसके 10 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे आप प्रॉपरली उसे बता देंगे तो पार्टिसिपेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर होंगे। साथ साथ आप जो पॉइंट्स बताना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में आपको 10 पॉइंट्स बताने हैं कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो, तो सिर्फ पॉइंट्स लोगों को याद नहीं रहते हैं, परंतु अगर उसको आप कोई छोटे से भी एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करेंगे कि जो उस बात से रिलेवेंट है, ऐसा छोटा सा भी एग्जाम्पल हो, स्टोरी हो, तो वह बात लोग सदा के लिए याद रहेंगे और आपके सारे 10 पॉइंट है वो उनको याद रह जाएंगे। कोटेशंस भी इसमें हो सकते हैं उस बात के अनुरूप, परंतु हर बात की छोटा सा भी एग्जाम्पल या तो कुछ क्लेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए ताकि वह पॉइंट याद रह जाए। साथ साथ में बीच बीच में हमें लोगों को हंसाना भी है, जैसे कहा कि ग्रास्पिंग जो पावर है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं है, अटेंशन हम नहीं दे सकते, परंतु आप लोगों को बीच बीच में हंसाएंगे तो फिर से वह रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी बात को ध्यान दे सकेंगे। परंतु हंसाते समय यह जरूर ध्यान रखिए कि वह एग्जाम्पल आपके टॉपिक के रिलेवेंट हो, ऐसे नहीं और भी कोई भी बात आपने बता दी और लोग हंसे भरे परंतु उसमें मजा नहीं आएगा, वह रिलेवेंट बात है वो हमें जरूर ढूंढनी चाहिए। और जब ये स्टोरी हम सुनाते हैं, भल हंसने की स्टोरी सुनाते और कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो पहले से प्रैक्टिस करें कि लोग जितनी बार ज्यादा हंसे उतना अच्छा है। सिर्फ एंड में हंसे उससे अच्छा तीन बार हंसे, चार बार हंसे तो बहुत ही अच्छा है। एक स्टोरी जो मैं हमेशा सुनाता हूं, आपने से भी कईयों ने सुनी होगी, कि जो परमात्मा के विषय में है, कि जो नास्तिक है परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उसकी कहानी फिर से मैं रिपीट करता हूं। सिर्फ यह देखिए कि किस प्रकार से उसमें व्यक्ति ज्यादा हंसता है। एक नास्तिक व्यक्ति था जो यह सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा नहीं है, तो उसने अपने प्रवचन में बहुत सारे उदाहरण दिए, साइंटिफिकली ये प्रूव करके बताया कि सचमुच भगवान नहीं है। पार्टिसिपेंट्स भी ये मानने लगे कि परमात्मा को नहीं मानना चाहिए, परंतु उसने जब अपने प्रवचन का अंत किया तब यह कहा कि आई थैंक गॉड बिकॉज आई हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो गॉड। तभी आपने सुनी है कहानी, परंतु कई लोग सीधा सीधा सुना देते तो लोग हंसते नहीं, परंतु जो वहां है, रुकना कहां है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा कि उसने कहा कि आई थैंक गॉड, तो वहां रुक जाओ। आप रुके तो लोग भी इंटरप्रेट करेंगे कि भी इसने ऐसा क्यों कहा होगा, और थोड़ा सा हंसेंगे, फिर एक दो सेकंड के बाद आप कहेंगे बिकॉज आई हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो गॉड, लोग वापस हंसेंगे। तो ऐसे ये सारा अगर हम थोड़ा सा सोच करके प्लान करके कहां पॉज करना है वह एप्रोप्रिएट होगा तो स्पीच बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। और साथ साथ हमें एप्रोप्रिएट फीलिंग्स भी उनमें इंड्यूस करनी है, कि सिर्फ हंसाना ही नहीं है, यह होना चाहिए कि लोग रोए भी। आज उषा बेन की स्पीच क्यों पावरफुल होती है, आप कभी देखना साइकिल पर जब वो लेक्चर लेती है, आप लोग बैठना, कई लोग रूमाल निकाल करके आंसू पोंछते, क्योंकि वो फीलिंग क्रिएट करती है लोगों में। मदर टेरेसा की कहानी सुनाती है और बातें सुनाती है तो लोगों की आंखों में सचमुच आंसू होते। तो इस प्रकार से हम पहले से ही प्लान करें कि मुझे क्या एप्रोप्रिएट फीलिंग, या तो करेज की बात भी हो सकती है कि भाई लोगों में हिम्मत आ जाए, ऐसी भी बात हो कि भी लोग सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, तो पहले ही सोचे कि क्या एप्रोप्रिएट फीलिंग मुझे लोगों में इंड्यूस करनी है। और थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं कि टू बिकम अ गुड स्पीकर वी नीड लॉट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। और वो मेंटल ट्रेनिंग में क्या बातें हैं, एक तो डीप रूटेड अर्ज कि मुझे अच्छे से अच्छा वक्ता बनना ही है, कुछ भी हो जाए वो अर्ज इतनी पावरफुल हो कि उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो अर्ज होगी तो आगे आप प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ साथ जरूरी है जिसको कहते हैं मेस्मराइजिंग वॉइस, या तो इसके बारे में वॉइस कल्चर भी कहा गया है। भल किसी को हमें किसकी नकल नहीं करनी है, इमिट नहीं करना है, हमारा अपना ही वॉइस हो, हमारा अपना ही ढंग हो जो यूनिक है, परंतु फिर भी एक बात को अलग अलग रीति से कही जा सकती है। मैं आपको कह के बताता हूं, आप देखना कि उसमें क्या फर्क है। पब्लिक स्पीकिंग इज अ डेफिनेट पावरफुल एंड अ श्योर वे टू गेट सक्सेस। दूसरा व्यक्ति कहता है ये गलत बोला, जल्दी जल्दी में बोल दी उस बात को। दूसरा व्यक्ति जो बीच में रुकता है और ठीक से बोलता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज अ डेफिनेट एंड अ पावरफुल वे टू गेट सक्सेस। इससे भी और अच्छा है जिसको कहते हैं कि जब हम जीभ के जो फर्स्ट टू थर्ड है उससे जब बोलते हैं तो वॉइस थिन होता है, हल्का होता है, उसमें वो वजन नहीं होता, परंतु जब हम पोस्टीरियर वन थर्ड से बोलते हैं तो तब उसमें पावर होती है। बस सदैव ऐसे नहीं बोलना है, उसमें मॉड्यूलेशन लाना बहुत ही जरूरी है, परंतु कुछ बार अगर पोस्टीरियर 1/3 से भी उस बात को बोली जाए तो अच्छी इफेक्टिव हो सकती है। इसी बात को अगर हम कहें कि पब्लिक स्पीकिंग इज अ डेफिनेट एंड मोस्ट पावरफुल मीन्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो अभी तीनों बातों में जो इम्पैक्ट हुई वो डिफरेंट हुई। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो वॉइस कल्चर भी हमें डेवलप करना चाहिए। और कैसे करेंगे? आप कहेंगे भी आपको तो प्रैक्टिस है, हम कैसे करें? तो इट इज वेरी सिंपल कि अपने नहीं वो आएगा कैसे 2/3 से, कि अब कमरे में भी हम करें और कभी आप खुले में टेरेस में या और कहीं स्थान पर चले जाए कि जहां थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं। आप देखिए अभी मैं अलग अलग जो अल्फाबेट हमारी है, पहले मैं आउटर साइड से बोलता हूं फिर इनर साइड से बोलता हूं, लाइक ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। तो ऐसे प्रैक्टिस करी दोनों तरीके से बोलने की, और जब आपको खुद क्लियर पता चलता है कि भी हाँ ये डिफरेंस मुझे मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं तो एक दूसरा नेचर भी बन जाएगा और ऑटोमेटिक मैं उस प्रकार से बोल सकूंगा। फिर हमें वर्ड्स बोलने हैं। एक सप्ताह इस प्रकार से अल्फाबेट को डेली आधा घंटा 15 मिनट बार बार रिपीट करिए और फिर वर्ड्स को बोलिए, जैसे कि बैठो बैठो, कम कम, थैंक यू थैंक यू, गुड गुड। ऐसे एक एक आप वर्ड्स को लीजिए और उस वर्ड्स को सॉफ्टली एंड विथ फोर्स, उसमें क्या डिफरेंस आता है। और फिर जैसे मैंने स्टेटमेंट बोल के आपको दिखाया वैसे स्टेटमेंट भी बोलिए, और स्टेटमेंट में पॉज भी, कहां रुकना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली रुकेंगे तो जो डिजायर्ड इफेक्ट होनी चाहिए वो डिजायर्ड इफेक्ट लोगों पर होगी। फिर थरो नॉलेज कि जो विषय को आप बताना चाहते हैं उसका आपके पास थरो नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ जैसे जैसे आप प्रगति करते जाए, शुरू में यह संभव नहीं है परंतु जब आप कुछ लेवल पर पहुंचे फिर यह भी कोशिश करिए कि मुझे लोगों से कुछ डिफरेंट बोलना है, ये जो कन्वेंशनली बोला जाता है उससे हटकर के भी कोई बात बतानी है और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, वह बात सही होनी चाहिए तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक बार मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में लेक्चर देने जाना था और वहां मेरे ही साइकेट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मेरे से पहले बोलना था, तो मैं इतना डर रहा था कि अभी इनके पीछे तो मैं क्या बोलूंगा, तो सब कुछ बोल देंगे और उनके सामने तो मैं बच्चा हूं। फिर भी वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि मैं कुछ नया बोलूंगा, उन्होंने जो कन्वेंशनल बातें वो सारी कन्वेंशनल बातें बता दी और फिर मैंने कुछ अलग से ही बताया उनको, जो हम आपको भी बताने जाएंगे कि किस प्रकार से सिचुएशन आर नॉट स्ट्रेसफुल। और वो सारा लेक्चर पूरा हुआ तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे पास आए, कहते गिरीश आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। कहते व्हाई डोंट यू कम टू अवर मेडिकल कॉलेज एंड टीच अवर स्टूडेंट्स। तो इसे हम कुछ नॉन कन्वेंशनल कहते हैं तो भी लोग एक्सेप्ट करते, डरने की बात नहीं है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लॉजिक और प्रॉपर बात है वह होनी चाहिए। साथ साथ चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, यह नहीं है कि जो मैं तैयार करके आया हूं वही बोलता रहूं, कि भी आप देखते हैं कि लोग सो रहे हैं तो जगा तो नहीं सकते कि भाई जाग जाओ क्यों सो रहे हो, है ना, जगा तो नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए कि भी तभी आपके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, भले थोड़ा हट जाना पड़े, वो टॉपिक आपका जो आपने डेवलप किया उसी अनुसार आप नहीं जा रहे हैं, परंतु उससे रिलेटेड भले थोड़ा आगे पीछे भी हो परंतु कुछ हंसी की बात बता दो, और लोग आप हंसी की बात बताएंगे लोग हंसेंगे तो ऑटोमेटिक वो जाग जाएगा, या ऐसा कुछ बोलो कि लोग तालियां बजाए ताकि भी वो व्यक्ति जो सो रहा है वह जाग जाएगा। साथ साथ टाइम जो है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइम इम्पोर्टेंट है? एक व्यक्ति ने अपनी स्पीच तैयार की, उसे 20 मिनट का समय दिया गया था और उसने वह स्पीच को पढ़ी तो 40 मिनट बोला। तो फिर ऑर्गेनाइजर थोड़े डिस्टर्ब हुए, कहते साहब हमने तो आपको बोला था 20 मिनट ही बोलना, आप 40 मिनट क्यों बोले? तो उसने सेक्रेटरी को बुलाया, उसको डांट दिया सामने कि पता नहीं मैंने तुमको बोला था 20 मिनट की स्पीच लिखना, 40 मिनट की क्यों लिखी? तो उसने कहा साहब मैंने तो 20 मिनट की स्पीच लिखी थी, परंतु आगे आपने मुझे कहा था कि साथ साथ में एक फोटो कॉपी भी दे दिया करो, तो मैंने आपको एक दूसरी कॉपी भी साथ में दी थी कहीं घूम जाए तो आपने दोनों पढ़ डाली। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो बात है, कभी भी लिखी हुई स्पीच पढ़नी नहीं है, भला पॉइंट इससे बढ़ जा, अधिक भी लिख लो अगर कंफ्यूज होते हो तो, परंतु लिखी हुई स्पीच पढ़नी नहीं है। और साथ साथ टाइम की जो बात है, घड़ी में भी नहीं देखना है। सबसे पहले तो ऐसे नहीं देखना है, आप घड़ी में देखेंगे तो लोग बेचारे टाइम को भूल गए, आपके स्पीच में इंटरेस्ट ले रहे, लेकिन वो टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, कभी कभी टाइम पूरा होगा। तो इसलिए ऐसे घड़ी को कभी भी नहीं देखनी, अगर सामने घड़ी है तो देख सकते हैं भल, और वो भी नेचुरली बोलते बोलते देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देख रहा है? और सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पास स्टॉप वॉच हो सकती है, इसी जो घड़िया है कि जिसको आप जीरो से लगा सकते हैं और जब आप स्टेज पे बोलना शुरू करें तो ऑन कर दो उसे, और कभी भी बोलते बोलते बीच में देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि 40 मिनट हुई या कितनी मिनट हुई, विच इज द बेस्ट वे। क्योंकि अगर हम फ्यूचर का भी कर सकते हैं कि आपने 12 बजे शुरू किया, मुझे 12:20 को पूरा करना है, परंतु कई बार जब हम स्पीच में इन्वॉल्व होते तो भूल जाते कभी शुरू किया, एग्जैक्ट टाइम पर जब स्टार्टिंग पॉइंट था वह हम भूल जाते हैं। तो इसके कारण स्टॉप क्लॉक इज द वॉच इज बेस्ट थिंग कि जिसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है बॉडी लैंग्वेज, ये कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ आपको अवधेश भाई ने ऑलरेडी बताया है, छोटी छोटी अगर बातें ऐड करनी हो तो एक तो कॉन्फिडेंस से खड़े हो जाओ, कभी भी ऐसे करके खड़े नहीं, ऐसे खड़ेंगे तो आपको पहले ही डर लगेगा, ये डर का ही पोस्चर है तो ज्यादा घबराएंगे, तो डरो ऐसे भी नहीं खड़े रहो। ये क्या बताता है पता है बॉडी लैंग्वेज? क्या कि यू आर क्लोज पर्सन, आप ओपन व्यक्ति नहीं हो, तो ऐसे भी नहीं करो, ऐसे पीछे भी हाथ नहीं रखो, लेट इट बी फ्री, फ्री होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हरेक की बॉडी लैंग्वेज यूनिक हो जाती है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को कभी सुना हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, उसे हमें कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, तो लोग हंसेंगे, वो हमारी एक यूनिक डेवलप हो। परंतु शुरुआत में जब तक वह नेचुरल आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाए, जब आप स्पीच तैयार करते हो तब ही सोच लो कि भैया बात बोलनी है तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कुछ पावरफुल बात बतानी है, आपको परमात्मा के बारे में इशारा करना है मैं ऐसे करूंगा, कुछ बात विशालता पर करना है तो मैं ऐसे करूंगा। भी सारा समय नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत आपकी बॉडी हिलेगी तो भी बुरी इफेक्ट होगी, परंतु थोड़े थोड़े समय में नेचुरली जो बात है उसके अप्रोप्रिएट आप एक्शन को थोड़ा सा सोच लीजिए और 20-25 स्पीच दे देंगे, उसके बाद तो वो नेचुरल होगा, आपको कोई इसके विषय में बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े भी आपके ऑकेजन के अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बहनों के लिए तो सहज है, भाइयों को आवश्यकता है, इस बात को हम थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, बहुत अधिक अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो क्योंकि आप डॉक्टर्स के सामने स्पीच देने जा रहे हैं, कोई कंपनी में मैनेजर्स के सामने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वे प्रॉपर ड्रेस में आएंगे। पर इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी है, परंतु वो कॉन्ट्रोवर्सी किस बात में है कि जब आप सोशल सर्विस करते हैं, पब्लिक स्पीकर के रूप में नहीं, आप एक अगर सोशल वर्कर है और आप झुग्गी झोपड़ी में सूट पहन के चले गए तो लोग आपसे दूर भागेंगे कि ये क्या हमारी सेवा करेगा। वहां पर तो बिल्कुल स्त्री भी नहीं किए हुए, सिंपल से कपड़े पहन के आप जाओ और लोगों की सेवा करो तो उनको अच्छा लगेगा। और साथ साथ ये ड्रेस का इंपॉर्टेंस शुरू में है, जब आप बहुत फेमस हो जाते हैं उसके बाद सिंप्लिसिटी विल बी योर एसेट। आप लोगों ने डॉक्टर एमसी मोदी का नाम सुना होगा, हु इज अ फेमस आई सर्जन, और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। हाँ, बेंगलोर की बहनें यहां पर बैठी है। हाँ, क्या कपड़े पहनते हैं? हाँ, बेंगलोर में है एमसी मोदी। हाँ, कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, बड़े सिंपल, वो टाई नहीं पहनते, पुराना सा कोट पहनते हैं और चप्पल पहनते हैं, शूज भी नहीं पहनते। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति इतना फेमस है, यो कहां भी जाए बड़े से बड़ा डायरेक्टर अपनी चेयर छोड़ देगा, उनको बिठा देगा कि साहब बैठो यहां पर। तो जब हम बहुत फेमस हो जाए फिर सिंपल होना लगना चाहिए, तो सिंप्लिसिटी की वैल्यू होगी। परंतु शुरू में कुछ हद तक जो अटेंशन है वह ड्रेस पर हमें जरूर देना चाहिए। और कहते हैं कि बी योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा कि भी किसी को भी हम इमिट नहीं करें, इवन वॉइस में भी इमिट नहीं करो, बी योर सेल्फ, मेक योर वॉइस मोर कॉन्फिडेंट बोल्ड। और बीबीसी में एक ट्रेनिंग होती है कि जो अनाउंसर्स बनते हैं उन अनाउंसर्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग में बहुत एक अच्छी बात बताई है कि जो हमको सबको अपनानी चाहिए। वह बीबीसी की ट्रेनिंग में बनारसी भाई कहते हैं कि बीच बीच में आप रुक जाओ और स्माइल दो, स्टॉप एंड स्माइल एट द ऑडियंस। तो स्माइल करने से कहते एक तो आपके वॉइस में स्वीटनेस आती है, और दूसरा जब आप स्माइल देते हैं तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है, ऑडियंस भी आपको ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने लगता है। तो भी एक छोटी सी प्रैक्टिस करने की बात है। अब अंत में मैं आप सभी को एक वरदान देना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके ये जो सारे पॉइंट ऑफ देश भाई और मैंने बताए, तो आप इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आप हमारे से भी अच्छे वक्ता बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ हाँ, अच्छा नहीं नहीं, वो तो यह वो पॉइंट यह थी जो अल्फा वेव्स की बात मैंने बताई, कहते हैं समझ में नहीं आई। मैंने ये कहा था कि वो जो यंग स्पीकर था, वो यंग डॉक्टर था, स्पीच देने के लिए गया था। एक सेकेंड, आपको कहीं जैसे डॉक्टर साहब को भी क्लियर नहीं हुई तो औरों को भी क्लियर नहीं हुई होगी कि एक यंग डॉक्टर बहुत ही सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट के सामने लेक्चर देने के लिए गया, उसको मेडिटेशन पर बोलना था। तो उसने मेडिटेशन में यह बात होती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ईईजी वो अल्फा पैटर्न पर आ जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 to 13 per second, इतनी बार वो इंपल्सिस, एक सेकंड में इतने इंपल्सिस निर्माण होते हैं। परंतु उसने अपने स्पीच में कॉन्फिडेंटली कहा कि मेडिटेशन में ऐसा ईईजी होता है जिसमें अल्फा वेव 8 to 13 per minute होता है, ऐसा उसने अपनी बात बोल दी। लेकिन ये बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, कोई ने खड़े होकर क्रिटिसाइज नहीं किया। ये तो बड़ा सिंपल था, कह रहे तुम बुद्धू हो, इतना भी मालूम नहीं है तुमको कि ईईजी क्या होता है। परंतु जब लेक्चर पूरा हुआ तो एक व्यक्ति ने उन्हें साइड में बुला करके प्यार से कहा, बहुत बड़ा सीनियर प्रोफेसर था, कि बेटे ये पर सेकेंड होता है, फ्यूचर में आप ऐसे बताना। तो मेरा कहने का यह भाव था कि डरो नहीं, कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो यह कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं है जिससे हम डरे। ये छोटी सी मिस्टेक है, कोई कह देगा तो भी क्या कहो कि हाँ जरूर ये मेरी मिस्टेक है, फ्यूचर में मैं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, अभी आपको प्रश्न उत्तर, आप प्रश्न अपने तैयार भी रखो जब तक दादी आ जाए। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि भी प्रश्न उत्तर में क्या, अवधेश भाई ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो जरूरी यह है कि पहला प्रश्न लोग आपको पूछेंगे नहीं, नॉर्मली जहां बहुत अच्छा ऑडियंस है, डॉक्टर्स है या मैनेजर्स है, वो शुरू कर देंगे। परंतु आम तौर पर आप स्कूल में गए हैं या तो महिला मंडल में गए हैं कि वहां पर लोग आपको प्रश्न पूछेंगे नहीं, तो हमें कुछ तरीके से लोगों को रिक्वेस्ट करनी की, जस्ट स्टार्ट आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो पहला क्वेश्चन पूछो तो फिर और भी सभी पूछेंगे, तो धीरे से कोई व्यक्ति मोटिवेट होगा। और अगर फिर भी मोटिवेट नहीं होते हैं तो एक तरीका है कहने का कि देखो ऐसी ही सिर्फ दो बातें संभव है, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो दो बातें संभव है, एक तो मैंने सब बातों को इतना क्लियर कर दिया कि आपको कोई डाउट नहीं रहा जो पॉसिबल, और दूसरा ये है कि मैंने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आपको कुछ बात समझ में नहीं है। इसलिए प्रश्न तो जरूर होंगे, कोई भी स्पीच ऐसी नहीं हो सकती आप पूछो, देन पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस। और शायद अभी आप एज ए बिगिनर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप अवधेश भाई की तरह अच्छे फेमस स्पीकर बन जाओ फिर ये टेक्निक अपना सकते हैं। अगर कहीं स्पीच में ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते तो उनको कहो कि देखो आप प्रश्न पूछेंगे ना तो मैं आपको तीन प्रकार से उत्तर दूंगा, और उसका मतलब है मैं आपको सीक्रेट बता देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट मीन्स आई नो द आंसर। अगर मैं कहूं इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट मीन्स आई डोंट नो द आंसर। और मैं कहूं कि इट इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा आंसर आता है, पूरा नहीं आता है। तो फिर जब लोग पूछे तो आप भी ऐसे उत्तर देते जाओ, आपको नहीं आता हो तो बोल दो वेरी गुड क्वेश्चन, तो लोग भी हंसेंगे जोर से। अच्छा अभी पूछिए। यस वेरी गुड। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं बताए थे बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोग्राम अभी अभी हुआ है, गोवा यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हुआ सारे प्रोफेसर्स थे, तो थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को बोलता है कैसे बोल रहा है, ये बोले जा रहा है क्या, ओरली बोल रहा है, नहीं देख उसके हाथ में स्लीप है, वो करके दिखाता है उसको। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर डेफिनेट आपके पास है कि जैसे अवधेश भाई ने कहा कि आपकी ट्रांसपेरेंसी भी रेडी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी रेडी है, सब कुछ तैयार है, तो फिर एक तरीका है कि आप बड़े स्लिप को नहीं रखो परंतु आपके ट्रांसपेरेंसी में छोटे लेटर से एग्जाम्पल्स लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो उसमें नहीं आएंगे, क्या आपको एग्जाम्पल देना है वो बहुत बारीक फॉन्ट में लिखो ताकि आप ही पढ़ सको, ऑडियंस नहीं पढ़ सकेगा, और फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो वहां जो पॉइंट आपने देखा बाजू में एग्जाम्पल भी लिखा गया है, तो यू कैन से दैट एग्जाम्पल या जो भी बात, आपको फिर नोट्स की आवश्यकता नहीं। हाँ और कुछ तो ये सोचना है पहले तो कि जो ऑडियंस को एक तो कौन है, साथ साथ वो क्या सुनने के लिए भी आए हैं। अगर आपका ऑडियंस राजयोग शिविर करने के लिए आया है, आपने उसको निमंत्रण ही दिया है कि भी तुम राजयोग शिविर करने के लिए आओ, फिर तो ठीक है आप सारे बाबा के ज्ञान को कुछ ढंग से लॉजिकली थोड़ा बताइए। परंतु अगर ऑडियंस आया है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सुनने के लिए, या तो यह जो स्मार्ट की ट्रेनिंग है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग कोर्स, और आप उसमें बाबा का ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो भी तो लोग कहेंगे कि भी ये क्या टॉपिक पर तो नहीं बोला, भला आपको सामने कोई नहीं कहेगा परंतु पीछे से कोई क्रिटिसाइज करेगा। और ये बात इससे थोड़ी सी हटकर के है, समझने जैसी है, हो सकता है कि आपकी स्पीच हो जाए फिर चार पांच लोग आके आपको कहे कि बहन जी आपकी स्पीच बहुत अच्छी हुई, डोंट बिलीव, शायद वो ऐसे ही आपको चढ़ाने के लिए बोल रहे कि आपकी स्पीच अच्छी हुई, अच्छी नहीं भी हो सकती। परंतु एक आधा व्यक्ति जो आपकी टीका करता है कि भी तुमने ठीक नहीं बोला या गलती की, जैसे पिछली बार भी मैंने थॉट मैनेजमेंट पर बोला था तो एक बहन ने कहा कि गिरीश भाई आपने प्रिपेयर नहीं किया था, बोल वो पहले तो हमको चुभता है कि कोई हमें ये टीका कर रहा है, बट दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, उस बात को आप एक्सेप्ट करो और अपने आप को चेंज करो तो इम्प्रूवमेंट होगा। और ऐसे जनरल बातें जैसे हम ले रहे हैं वैसे जरूर होंगी। ओम शांति।